ओम शांति। हम सब के बीच में वरिष्ठ आदरणीय राजयोगिनी भारती दीदी जी हम सब के बीच में हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से दीदी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। आदरणीय दीदी जी लोटस अहमदाबाद से हैं। आप बचपन से ईश्वरीय ज्ञान में हैं। आप 35 वर्षों से समर्पित होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सेट विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और बचपन से ही आपको दादियों का सानिध्य मिला, साथ मिला, आपने बहुत कुछ सीखा और यज्ञ में रह करके सेवाओं में सहयोगी सक्रिय हैं और आप बहुत ही सरल, सहज और सहयोगी, मिलनसार, आज्ञाकारिता के गुणों की आप धनी हैं। तो आप हम सबके बीच में, आपका ये टॉपिक है दादियों के अंग संग के अनुभव। तो हम सभी दीदी द्वारा ये सुनेंगे दादियों के अनुभव। आदरणीय भारती दीदी जी ओम शांति। और एक ये अनाउंसमेंट था, कल भी कहा गया था कि गाड़ी नंबर GJ01RA3302 जिसकी भी ये गाड़ी है, ये गाड़ी थोड़ा सा हटाने का कष्ट करें। कल भी अनाउंसमेंट हुआ था, ये गाड़ी ज्ञान विज्ञान भवन के सामने है और इस गाड़ी को थोड़ा सा साइड करना है। ये जिसकी भी गाड़ी है प्लीज इसको थोड़ा साइड करेंगे।
ओम शांति। ड्रामा बड़ा वंडरफुल है दादियों के साथ के अनुभव की बात निकली तो मैं कहूंगी आज हमारी रतन मोहिनी दादी निमित्त बन गई, क्योंकि दादियों के बारे में सुनाना है तो वो निमित्त बन गई कि हमारे बड़े सारे आज एक मास का भोग है वहां तो सभी को जाना हुआ, तो हमारी सुदेश दीदी को भी जाना हुआ। तो हमारा पार्ट बाबा ने खोल दिया। बाबा जानी जाननहार है। हम लोग चेस खेलते हैं ना, तो उसके अंदर मोहरे को हिलाना होता है, ठिकाने पे रखना होता है। तो बाबा बड़ा वंडरफुल डायरेक्टर है इस ड्रामा का, किस मोहरे को कहां सेट करना है बाबा जानता है। तो मैं सबसे पहले बाबा को शुक्रिया कहूंगी कि सभी दादियों की इतनी पालना ली है तो वो अनुभव सुनाने का मौका बाबा ने दिया। जैसे बताया कि बचपन से ही ज्ञान में है, तो ज्ञान में आए तो जिसकी पालना मिली वो थी प्यार की देवी। आप सभी लोग जानते हैं उनको, कैलाश बहन, जिसको कैलाश पहाड़ी के नाम से पहचानते हैं। इस वक्त वो गांधीनगर सेंटर में अपना कार्य ईश्वरीय सेवाएं दे रही है, जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली थी। तो जब सेंटर पे आए तो दीदी की पालना थी और हमारी सरला दीदी हमारी क्लास टीचर थी जो गुजरात जोन की हेड है, इस वक्त अव्यक्त हो गए। तो वो भी मैं कहूंगी कि कोई दादी से कम नहीं थी। दादियों की लाइन में ही थी और अगर शायद आज होती तो वो दादी ही होती। इन दोनों का यज्ञ के साथ बहुत प्यार था, शायद खुद का नहीं सोचा होगा, खुद के सेंटर का नहीं सोचा होगा, उतना यज्ञ के लिए किया, यज्ञ के लिए सोचा और अंत तक यज्ञ के लिए ही कर रहे। तो ऐसी दोनों विशेष आत्माओं की बचपन में पालना मिली, क्योंकि बचपन इतना छोटा बचपन था कि ज्ञान को समझना तो दूर की बात थी। जो भी बचपन से आए होंगे उनको पता होता है कि बाबा के घर में क्या क्या नहीं मिलता है, और वो भी निस्वार्थ। इतना प्यार शायद दुनिया में कोई किसी को दे पाता हो, इतना प्यार मिलता है। और मैं कहूंगी कि ये भी मौका हमें ही मिला कि यज्ञ के अंदर जब बच्चों के लिए कुछ सोचा गया, बच्चों के मधुबन में क्लासेस होने लगे, उनकी व्यक्तित्व विकास शिविर होने लगी, उसमें ही फर्स्ट बैच में हमको मौका मिला। तो तब से पालना लेते लेते, और उस वक्त तो पता है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ शुरू किया तो ब्रह्मा बाबा ने भी बच्चों को इतना इम्पोर्टेंस दिया और उनकी इतनी पालना की कि वो सारे दादियां बन गई और वो यज्ञ की नींव बन गई। तो दादियों को जो पालना साकार बाबा ने दी, वो दादी ने, और विशेष कहूंगी प्रकाशमणि दादी ने, उस वक्त नहीं तो हम 15 साल तक बच्चों के प्रोग्राम में आते रहे शुरू से लेके, फिर तो टीनेजर्स में आ गए। तो वो दादी की जो पालना हमें मधुबन से बच्चों के प्रोग्राम में मिली, मैं कहूंगी कि किसी का पिता हो, माता हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, किसी की ताकत नहीं होती कि इतनी प्यार से हर रीति से ऑलराउंडर डेवलपमेंट, जिसको कहेंगे चाहे खेल कूद हो, चाहे नैतिक मूल्यों की बात हो, चाहे डिसिप्लिन की बात हो, वो ऐसे सिखाती थी कि बच्चों को भी पता नहीं पड़ता था कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्या बन रहे हैं। तो कहते हैं कि जो ईंट होती है तो जिसको बचपन से ही बाबा के घर में पालना मिली है, और वो भी विशेष प्रकाशमणि दादी की पर्सनल केयर, वो इतना टाइम भी देते थे, तो वो बच्चा कुछ रिजल्ट ना दे वो हो नहीं सकता है। मैं खास इसीलिए कहूंगी कि गृहस्थी बैठे हुए हैं, सभी के बच्चे भी होंगे और पोते पोतियां भी होंगे। आजकल जो पढ़ाई के अंदर मिसिंग बात है, जो वैल्यूज आज बच्चों के अंदर नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, जनरेशन गैप है बहुत सारा। तो अगर बच्चे बाबा के घर में आते हैं तो जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, शायद घर में माँ बाप उनको नहीं सिखा पाते, तो वो बाबा के घर में आते हैं तो वो नेचुरल, उनको नहीं पता रहता कि हम क्या सीख रहे हैं। मेरे अनुभव से कह रही हूं, उनको पता नहीं रहता है कि उनकी मंजिल भी तय हो रही है, उनका ठिकाना भी बन रहा है। तो वो चीज बच्चों को बाबा के घर से और विशेष यही पांडव भवन की भूमि से हम लोगों को प्राप्त हुआ। एक दादी प्रकाश मणि, एक निर्वैर भाई साहब जिसको बच्चे अंकल कहते थे, उनकी भी इतनी बेहद की पालना, इतना करीब का टच कि मैं कहूंगी कि हमको तो भाषण करना कैसे है। वो भी निर्वैर भाई ने चलते चलते वॉक करते करते नखी लेक तक वो बात सिखाई थी। तो बचपन की नींव पक्की थी, लेकिन ये सबको अनुभव है कि जो बच्चे बचपन में ज्ञान में चलते हैं आजकल लास्ट तक बने रहे ये जरूरी नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी कि अगर सेंटर के साथ संग बना हुआ है, किसी ना किसी रीति से टच में है, तो पारस के साथ टच में ज्ञान क्या है, हमारी बुद्धि को सालिम बनाता है, क्लीन और क्लियर करता है। बहुत सारी बातें जो उस एज में हमको समझ में नहीं आती है, लेकिन हमारी बुद्धि जैसे जैसे क्लीन होती जाती है और जब हम बड़े होते हैं तो मन के अंदर क्लैरिटी आती जाती है। दुनिया की कंपैरिजन हम कर सकते हैं, ऐसी एज में पहुंचते हैं अर्थात कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है निर्णय का, लाइफ के अंदर सही निर्णय लेने का स्टेप होता है। उस एज तक जब हम पहुंचते हैं तो बुद्धि काफी मैच्योर हो जाती है, डिसीशन ले पाती है। तो तब तक सेंटर से कनेक्शन, एक आदि दो कुमारियों की भट्टी भी की, कुमारी की ट्रेनिंग भी की, लेकिन फिर भी मन के अंदर प्रॉपर इतना क्लैरिटी के साथ लक्ष्य नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। परंतु मैं कहूंगी कि मेरे जीवन में दादियों का तो था ही, लेकिन बाबा के वरदान भी काफी मदद रूप बने थे, क्योंकि लास्ट लास्ट जब बाबा को मिले तो बाबा ने यही वरदान दिया था और पूछ लिया था। तब पर्सनल बाबा मिलते थे लास्ट टाइम, तो बाबा ने हमको कहा था कि बच्ची तुम मेरी बनोगी ना। तब उस वक्त 12th की एग्जाम दी थी, तब वेकेशन में आई थी, पर पता नहीं था कि बनना मना क्या, लेकिन बाबा बोल रहा है, बाबा के प्रति श्रद्धा भाव, बाबा के प्रति भावना, तो उस वक्त हाँ कह दिया, हाँ कह दिया, हाँ कह दिया। फिर बाबा ने एक वरदान दिया था कि बच्ची रेडी ब्रह्मा कुमारी। अब रेडी ब्रह्मा कुमारी क्या होता है वो भी नहीं पता, लेकिन वो ले लिया और वो शब्द याद रहे और उसके बाद भूल गए। पढ़ाई पढ़ने के बाद जब फाइनल किया कि नहीं बाबा के घर में, उसकी भी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन मुझे सिर्फ दादियों के साथ के अनुभव शेयर करने। तो उस वक्त जब डिसीशन लिया, तो जब डिसीशन लिया तो पहले पहले मधुबन में आए कि रहना स्टार्ट करे, उससे पहले मधुबन में आए दादी को मिलने, क्योंकि दादी के साथ, प्रकाशमणि दादी के साथ इतना गहरा संबंध था। तो जैसे ही पैर रखा, हम दादी को बताए कि दादी हमको यहाँ बोला गया है रहने जाने के लिए, तो दादी ने ही पकड़ा और बोला चलो कमरे में। और दादी ने उस वक्त कहा अब भी रहने नहीं जाना है। ऐसा तो आपने सुना भी कम होगा कि कोई रहने के लिए तैयार हो जाए, प्लेस डिसाइड हो जाए, सब कुछ हो जाए, जाने का टाइम भी आ गया और दादी ने कहा नहीं स्टॉप, दादी देखेगी। अब दादी ने ऐसा बोला तो अब जाकर के जवाब क्या दे दीदी को। तो हमने क्या किया, बाहर जाने का प्रोग्राम बना दिया और कहा कि अभी तो सेंटर पे रहने जाएंगे तो फिर उसके बाद तो कहीं जा नहीं सकते, तो नेपाल जाने का प्रोग्राम बना दिया। ऐसे करके दो साल तो जितने समर्पित समय हुआ उससे मैं 2 साल ज्यादा काउंट कर दी। 35 तो प्रैक्टिकल, परंतु बुद्धि से समर्पित 2 साल पहले से, क्योंकि दादी ने मना किया माना बाबा ने मना किया। उसके बाद हमने क्या किया, ऐसे ही सेंटर पे रहना शुरू किया गांधीनगर में। और उस समय की बात है, उस वक्त 89 में शुरू किया, 7 महीना हुआ था और 90 के अंदर जनवरी में दादी जान की हेल्थ इश्यू के कारण सुख शांति भवन जो गुजरात का हेडक्वार्टर है वहां पर आए हुए थे। उस समय उनकी को न्यू लाइफ मिली थी, इतना दमा की तकलीफ थी और निमोनिया हुआ था दादी को। तो उस समय दादी वहां थी और कैलाश दीदी के साथ जाना हुआ भोग बनाने के लिए। आपको पता हो कि दादी को भोग के प्रति इतना प्यार होता था, इतना प्यार होता था। और जिस भक्ति मार्ग में जो दिन होते हैं ना, उधर जो बनाया जाता है उस हिसाब से वो भावना को इकट्ठा करती थी और उस हिसाब से भोग बनवाती थी। तो भोग बनाने के लिए कैलाश दीदी को बुलाया गया तो दीदी ने कहा ये भोग तो आपको भी बनाना आएगा, आपको पता है दाल पकवान जो सिंधी लोग खाते हैं, वो बोला था। अब भोग भी कैसे किसी का जीवन परिवर्तन कर सकता है। तो ले गई थी दीदी, तो दादी ने देखा, फर्स्ट नजर पड़ी और सरला दीदी को कहा बस मुझे इसको ही रखना है। उस वक्त लोटस हाउस बहुत छोटा सा घर, बहुत छोटा सा घर लिया गया था विदेशियों के सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए, कि मधुबन आने से पहले थोड़ा सा रेस्ट और नाश्ता आदि कर रहे। इतना बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था मकान, तो वो लिया गया था। और दादी ने डिसाइड कर लिया कि तब ढूंढ रहे थे किसको रखना है, बहुत सारे नाम गए थे, परंतु दादी ने देखते ही डिसाइड किया। परंतु सरला दीदी ने दादी को कान में बोला, इसका बाप तो ज्ञान में आता है लेकिन इसकी मां नहीं आती है, मतलब थोड़ी बंधन वाली है, आप सोच लो। दादी ने कहा वो चिंता आप नहीं करो। उन्होंने कहा कल ही इसके बाप को बुलाओ, मैं बात कर लूंगी। उन्होंने क्या कहा, पापा के साथ क्या बात की, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे घर से ऑफिशियल परमिशन मिल गई। और मुझे उस दिन दीदी ने कहा कि आपको 1 मास के बाद वहां जाना है, तो 1 मास के बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन दादी ने क्या किया, नेक्स्ट डे ही सरला दीदी को गांधीनगर भेजा, वो बच्ची को आज ही लेके आओ, मेरे को 1 महीना नहीं वेट करना है। तो मैं कहूंगी कि थियोरेटिकल ट्रेनिंग टीचर बनने की तो मधुबन में ली, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है, 1 मास दादी वहां थी, 1 मास के अंदर दादी ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हर रीति की, हर रीति की। सबसे पहले तो मेरा जीवन इतना लग्जरियस था, इतना कभी काम ही नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, लेकिन जो सेंटर की सबसे पहली जरूरत थी, जो सेंटर पर बाबा ने रखा, वो अथक सेवा की जरूरत थी, नॉन स्टॉप और अथक सेवा, जो मेरे ब्लड में ही नहीं था। तो दादी ने एक मास के अंदर पूरी रीति मिलिट्री की तरह तैयार किया। सवेरे और शाम दादी को जो भी मिलने आते थे, चाहे विदेशी हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी मिलने आते थे तो मेरी ड्यूटी थी उनको मिलवाना, और विदेशी है तो ट्रांसलेशन करना, दादी क्या बोल रही है और वो क्या बोल रहे हैं वो दादी को बताना। तो वो काम मिला, माना दादी कैसे ट्रेन कर रही। आज भले हम पढ़ाई इंग्लिश में करते हैं लेकिन स्पीकिंग पावर नहीं होता है, और वो भी सीधा ट्रांसलेशन। तो दादी ने प्रैक्टिस देना शुरू कर दिया कि उधर क्या क्या जरूरतें पड़ेगी, तो वो किया सवेरे और शाम। दूसरा, सरला दीदी ने भी ट्रेनिंग देना शुरू किया। आज कोई सेंटर खुलता है तो वहां पहले स्टूडेंट्स होते हैं, वहां से इनविटेशन मिलता है और फिर हम लोग स्टूडेंट्स बताते, इनकम बताते, तब सेंटर खुलता है। लेकिन लोटस हाउस की हिस्ट्री अलग है कि वो यज्ञ के जरूरत के हिसाब से, यज्ञ को सपोर्ट करने के लिए वो सेंटर खोला। एक भी स्टूडेंट नहीं। तो फिर हम लोग रेडी करते हैं सेंटर, लेकिन हमको उसी वक्त कहा गया सेंटर में क्या क्या चाहिए। एक कुमारी घर से आती है और उसको आप कहो कि सेंटर में क्या क्या चाहिए, वो लिस्ट बनाओ और दोपहर को खरीद के आओ, आगे पीछे कुछ नहीं। तो हमारी वहां नेहा बहन है और मैं दोनों मिलकर के दोपहर को सारी दोपहर खरीदी करते थे और फिर वापस आकर मुंह धुलाई करके वापस दादी के पास सेवा में, और वहां से छुट्टी मिलेगी 10 बजे। आप सोच लो, अमृत वेला और रात को 10 विदाउट ब्रेक, और नया आया हुआ व्यक्ति, और वो भी एकदम ऐसे कहेंगे डेलिकेट, परंतु बिल्कुल दादी ने आर्मी की तरह तैयार किया। और जब कोई चीज एक मास के लिए संलग्न की जाती है तो वो क्या बन जाता है, संस्कार बन जाता है। तो वो संस्कार बना, सेंटर पर गए, सेंटर छोटा सा लेकिन भक्त ज्यादा, भले बाहर वाले नहीं परंतु बीके, नॉन बीके के साथ सेवा नहीं, क्योंकि बहनों की जनरली नॉन बीके के साथ सेवा होती है, उनको ज्ञान सुनाना होता है और उनको पक्का बना करके स्टूडेंट बनाते हैं। लेकिन हमारी सेवा थी ऑलरेडी बीके के साथ, जो बाबा के घर में मधुबन में बाबा मिलन में आते हैं या कोई प्रोग्राम में आते हैं तो बीके के साथ सेवा। घर छोटा सा, आने वाले इतने, क्यों बाबा ने अथक बनाया, क्योंकि कभी दिन को तो जगह नहीं मिलती थी सोने, आप सोचो रात को भी 1 बजे तक बेड नहीं मिलता था, 1 बजे तक बेड नहीं, इतने लोग आते थे कि हम आंगन में कुर्सियां डाल देते थे और उनको कुछ बोलते नहीं थे, एक चेयर पे वो लोग बैठते थे, एक चेयर पे पांव रख के सो जाते थे। अब जब वो फ्लाइट में उड़ते थे तब हम अंदर जाते थे, तब तक सोसाइटी के अंदर वॉक करते थे 1 बजे तक, सोचो, क्योंकि छोटा सा घर था। ऐसे में सरला दीदी हमें, दादी जब भी आती थी, आपको पता रहे कि दादी जानकी जो आती थी ना, वो कभी भी ब्राह्मणियों को नहीं लेके आती थी, और ऐसे ही उतरती थी और मधुबन जाती थी। तो कई बार दीदी ने हमको, दादी को मधुबन छोड़ने के लिए भेजा। तो दादी की विशेषता क्या थी, कोई भी, चाहे कितनी भी छोटी आत्मा हो, कितनी भी छोटी आत्मा। दादी ये नहीं देखती थी कि वो उम्र में छोटी है, लेकिन दादी उतनी ही पालना देती थी, उतनी ही पालना देती थी। वो मुरली खुद सुनाती थी, नहीं तो ऐसे भी बोल सकती है आप पढ़ के सुनाओ मुझे, लेकिन ऐसा नहीं बोलती थी। दादी खुद मुरली पढ़ के सुनाती थी, और अगर उनके साथ कोई और होता ना तो उसके साथ एक्सपीरियंस शेयर करती थी। एक भाई जो ड्राइविंग करके जाता है, दादी उसके कान में भी कुछ भू भू करके करके ज्ञान सुनाते सुनाते, जैसे कहते हैं कीड़े को क्या बना दिया, आप समान बना दिया। वो प्रैक्टिकल, वो नहीं सोचती थी मैं दादी हूं, वो नहीं सोचती थी कि मैं ट्रैवल करके जा रही हूं तो थोड़ा दो मिनट आंख बंद करूं, तभी नहीं सोचती थी। वो उसको सुनाती थी सुनाती थी, और वो नहीं है अकेली मैं हूं तो मुझे भी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी सुनाती रहती थी सुनाती रहती थी। तो भले मैं कहूंगी कि हमने बैठ करके क्लास नहीं किए, इतने सारे बैठ करके इतना सारा योग नहीं लगाया, लेकिन वास्तव में सच्चा योग क्या है, कर्म योग। दिल से कर्म करो, और किसका काम कर रहे हैं हम, बाबा का काम कर रहे हैं, यज्ञ का काम कर रहे हैं। यज्ञ से ये प्यार और पालना पाके जाए, ये सोचती थी दादी। तो वो देख करके वही संस्कार इमर्ज होने लगे। तो दादी ने रास्ते में भी पालना दी, और मैं तो दादी से ऐसा अनुभव किया है कि दादी जो कुछ देना चाहती थी, जितना देना चाहती थी, वो देखती थी अभी क्या बाकी है, अभी क्या बाकी है, अभी इनके अंदर क्या बाकी है, वो देखती रहती थी। मैं कई बार बोलती थी दादी क्या देख रहे हो, तो बोलती थी मैं सोच रही हूं कि आपको और क्या दूं, मैं क्या दूं। तो एक एक चीज भरती थी। फिर कई बार दादी ऐसा बोलती थी कि तेरी जन्म पत्री मैंने लिखी है, और मैं ऐसा अनुभव करती हूं कि सचमुच दादी ने मेरी जन्म पत्री लिखी है, नहीं तो मैं कब से छोड़ छाड़ के चली भी गई होती, क्योंकि इतनी स्वतंत्र लाइफ थी, इतनी स्वतंत्र, इतना भी बंधन कभी देखा नहीं था। और ब्रह्मा कुमारी जीवन में तो थोड़े बहुत तो बंधन रेगुलेशन रूल्स होते हैं, लेकिन बाबा ने ऐसी जगह पर रखा और ऐसे के साथ रखा, दादी के साथ डायरेक्टली। भले दीदी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जितना दीदी के साथ जुड़े हुए थे उतना दादी जानकी के साथ जुड़े हुए थे। मैं कहूंगी कि दादी के उस वक्त जितने भी ईमेल्स आते थे तो हम निकाल के देने जाते थे दादी को, तो दादी पहला सवाल पूछती थी, आपने ये ईमेल पढ़ा? हमने कहा दादी आपका मेल है, हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो आपको डायरेक्टली दे दिया। बोलती थी नहीं, अब मैं पढ़ रही हूं ना, या तो मुझे पढ़ के सुनाओ, या तो पढ़ लेगी तो उसको आंसर क्या देना है वो लिखवाती थी, बोले अच्छे से पढ़ो। तो हम जानते हैं कि विदेश के लोग दादी को ईमेल लिखते हैं तो बिल्कुल ओपन हार्टेड होके लिखते हैं, कुछ छुपाते नहीं है जैसे हमारे भारतवासी छुपाते, दिल का हाल पूरा का पूरा लिख देते हैं। तो दादी ने कभी ये नहीं सोचा ये इतनी छोटी है ऐसी बातें अभी सुनेगी तो उनके जीवन पे असर हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगी वो पहले से ही जवेरी थी। वो जानती थी कि ये पिकअप कर लेंगे, और इनको भी बाद में, क्योंकि उस वक्त तो छोटा सा था, 4-5 लोग रहते थे, बाद में जाके सेंटर बड़ा होगा वो पहले से ही जानती होगी। तो उसने वो चीज को समझना, वो सब चीजें उस वक्त सिखाए। और वो कैसे एवरेडी बनाती है, हम लोग एयरपोर्ट पे रिसीव करके आते थे फॉरेनर्स को, आप जानते हो कि दादी कथा किए बिगर जाती नहीं है कहीं पर भी। आएगी माना पहले कथा करेगी, सबको बिठाएगी, कुछ न कुछ ज्ञान सुनाएगी, मुख मीठा करवाएगी टोली से, उसके बाद वो जाएगी। तो एयरपोर्ट से रिसीव करके आ रहे हैं और कुछ खाया भी नहीं है पिया भी नहीं है, वो बैठी है तो बोलेगी बैठो बैठो, क्लास कराएगी। हमको पता नहीं है क्लास करना, वो बात चीज अलग होती है। फिर उठे उस वक्त क्या कहेगी कि आप ट्रांसलेशन करो, बाहर से आए बोलेगी आप ट्रांसलेशन करो, ये इंग्लिश वाले बैठे हैं उनको ट्रांसलेशन करो। फिर गाड़ी में उसको छोड़ने जाएंगे ना तो वो क्या कहेगी, अभी सारा क्लास तूने सुना ना, मैं पहुंचू मधुबन में उससे पहले ये क्लास लिख करके आप भेज देना। मतलब ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो कौन देता है। अब दादी को लिख कर देना है, दादी ने क्लास करवाया है, उसको पता है क्लास मैंने क्या करवाया है, हमने आगे पीछे लिख दिया तो कितनी पॉइंट्स रह जाए तो, क्योंकि सुनना एक बात होती है, सुनने के बाद लिखना एक बात होती है। तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दादी ने दी। दादी लिटरेचर जब छपवाती है तो उस वक्त इकोनॉमी नहीं करती थी। कई लोग क्या है, हर बात में इकोनॉमी करते हैं, लेकिन कहां इकोनॉमी करनी है कहां नहीं करनी है। तो लिटरेचर तो बेस्ट टू बेस्ट होना चाहिए, कागज भी ऐसा होना चाहिए इंसान को लिटरेचर पढ़ाए तो फेंकने की दिल ना हो, मुझे पढ़ना ही है, ऐसा होना चाहिए। और हम लोग क्या करते थे, सीजन पूरी होती थी दादी जाती थी तो दादी को सारा हिसाब लिख करके देते थे, क्या क्या चीजें भी आई, चीजें भी और कितना आया, सब कुछ लिख करके देते थे। लेकिन लिखते थे, भले हमने मास्टर इन कॉमर्स किया, लेकिन लिखना कैसे है, हिसाब को लिखना कैसे है, कितनी क्लैरिटी के साथ क्या क्या बातें होनी चाहिए, वो दादी सिखाती थी। तो इतना दादी ने ध्यान दिया। और दादी की विशेषता होती थी, छोटे से मकान के अंदर हम लोग रहते थे, एक पूरा जो है कॉमन प्लॉट उसमें हम लोग डाइनिंग हॉल बनाते थे, लेकिन हमारे भले स्टूडेंट चार हो या पांच हो, लेकिन अहमदाबाद के स्टूडेंट को बुला करके क्लास कराना है तो एक दूसरा टेंट तुरंत बांधना है, कितने भी बिजी हो तुरंत दूसरा टेंट बांधना है। तो सारे अहमदाबाद के लोग क्लास करने आते थे। वो ढीलापन अलबेलापन किसी भी सब्जेक्ट को न्याय न देना वो था ही नहीं, वो उन्होंने सिखाया। क्योंकि सारा दिन बिजी रहना, दिन के 16 घंटे 17 घंटे बिजी रहना, उसके बाद वो हाथ पकड़ लेती थी कि आज आपने मुरली सुनी है, वॉक करने ले जाती थी हाथ पकड़ के, फिर पूछती थी आज आपने मुरली सुनी है, हम कहते थे देखा आपने, अमृत वेला भी हमने एयरपोर्ट पे किया, उसके बाद भी गए, उसके बाद भी मुरली के टाइम आपको रिसीव करने आए, कब मुरली क्लास करेंगे। बोले नहीं, कुछ भी हो जाए पर्स में मुरली रखो, एयरपोर्ट पे किसी के लिए 10 मिनट भी वेट किया है, 10 मिनट भी, तो आप वो 10 मिनट भी मुरली सुनो। ब्राह्मण है ही नहीं जब तक मुरली नहीं सुनी, चाहे कितने भी बिजी हो क्या भी हो, एक सिर्फ बहाना है, सुनना ही है। और हमको उसने सिखाया कि आप तकिए के नीचे मुरली रखो, 2 मिनट भी अगर आप लाई डाउन होते हो ना, 2 मिनट शरीर को तो रेस्ट मिलता है, आप आत्मा को भोजन दे दो मुरली तो जब भी हम लोग एयरपोर्ट में जाएंगे तो हमारे पर्स से मुरली जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। और अमृत वेले रिसीव करने जाते हैं तो उधर शांति से बैठ करके योग करते थे, शांति से बैठ करके, क्योंकि बैलेंस लाइफ के अंदर वो दादी ने सिखाया, बैलेंस लाइफ के अंदर। और अपने आप को डील कैसे करना, दादी को हमने देखा, वो खुद खुद की डॉक्टर थी। जब भी दादी बीमार होती थी, आप सुनते होंगे कि दादी लोटस में है, जब भी दादी बीमार होती थी ना, डॉक्टर को तो ठीक है दिखाती थी, लेकिन उसका ऐसा होता था कि वो कमरा बंद कर देती थी और साइलेंस में चली जाती थी बॉडी को, क्योंकि पता है कि वो सुनाए बिगर रह नहीं सकती। और हमको ये भी पता है कि सुनाने में एनर्जी ज्यादा जाती है, तो सुनाती थी तो एनर्जी जाती थी, तो वो सुनाना बंद करती थी, साइलेंस में जाती थी और रेस्ट करती थी। रेस्ट करने के बाद 2-3 घंटे में बाहर आती थी, फुल एनर्जी, 100% एनर्जी। तो खुद को एनर्जी से कैसे भरना, मेरी वीकनेस क्या है, सुनाना वीकनेस तो नहीं है, वो तो ज्ञान सुनाती थी, कोई फालतू बात नहीं सुनाती थी, लेकिन फिर भी वहां जाता है तो उसको रिकॉप कैसे करना, उसको कैसे वापस लेना, वो उसको आर्ट आता था, आता था। दादी किसी को ज्ञान ना सुनाए, माना क्या, माना क्या, उसकी माना क्या होती थी कि जरूर वो तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में दादी को एडमिट करते थे, सब डॉक्टर्स दादी को जानते थे सब, और ऐसे ही नहीं कि जो बीमारी है वही डॉक्टर विजिट करेगा, सारी हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर्स है, दादी पता चले आई तो सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स विजिट करते थे, विजिट करते थे माना मिलने आते थे, और दादी किसी को कुछ कुछ सुनाती थी। और जब भी एकदम नहीं सुना पाती थी, माना थोड़ा ज्यादा बीमार होती थी, तो दादी मौन रखती थी। फिर 2 दिन हो जाए, दादी को छुट्टी मिलने वाली हो, तो डॉक्टर मिलने आए ना, तो वो सुनाना शुरू कर देगी। तो वहां के डॉक्टर बोलते थे, दादी हमको पता चल गया कि आप ठीक हो गए हो। तो कैसे, तो आपने सुनाना शुरू कर दिया। तो ये दादी की विशेषता थी। अन्न का मन के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, जो काम पैसा नहीं कर सकता है वो काम टोली करती है। इसीलिए हम कहते थे दादी हमेशा अपने साथ क्या कैरी करती है, पोटला, इतनी इतनी टोली नहीं, पूरा पोटला, जैसे कहते ना सांता क्लॉज होता है, वो अपने साथ क्या कैरी करता है, बच्चों के लिए चॉकलेट्स। तो दादी कोई भी हो, पूरा एयरपोर्ट जानता था कि आज दादी आई है, आज दादी आई है, क्योंकि सबको टोली मिलती थी, सबको, इवन सिक्योरिटी वालों को भी टोली मिलती थी, जहां लगेज चेक इन करते उनको भी टोली मिलती थी, तो हरेक जानता था। एक हॉस्पिटल में हरेक स्टाफ जानता था कि दादी एडमिट है, एक एयरपोर्ट से ट्रेवल करती थी तो हरेक जानता था कि आज दादी ट्रैवल करेगी। और हमने तो लोटस से मधुबन उनके साथ ट्रैवल किया है, दादी की गाड़ी इतनी स्पीड में जाती थी जैसे कोई मिनिस्टर की गाड़ी जा रही है, ऐसी स्पीड में, और टोली का डब्बा साथ में, 3-4 जगह ऐसी परफेक्ट होती थी जहां दादी की गाड़ी रुकती थी, टोली देती थी और जाती थी, ऐसे जाती थी। दादी ने जीवन के अंदर कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है। अगर महान आत्मा बनना है तो ये टाइम एक ब्राह्मणों का वैल्यूएबल खजाना है, जो एक बार चला गया फिर वापस नहीं आता है। तो दादी ने हमेशा टाइम को इम्पोर्टेंस दिया, हमेशा टाइम को इम्पोर्टेंस दिया। टाइम की कदर थी। क्लास कराएगी, उसके लिए बैठेगी, लेकिन नाश्ता करने दादी बैठती नहीं थी। वो बोलती थी पैक कर दो, मैं रास्ते में खा लूंगी। मतलब खाने के लिए भी टाइम वेस्ट गिनती थी। आज आप सोचो, यज्ञ के अंदर दादी नर्स के रूप में थी, वो यज्ञ की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन गए। आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूं कि ऐसे कहा जाता है कि अमेरिका का वीजा मिलना सबसे हार्ड है, सबसे हार्ड है। और अगर पासपोर्ट पे एक भी वीजा नहीं लगा हुआ है और आप अमेरिका का वीजा लेने जाते हो, फर्स्ट टाइमर हो, सवाल ही नहीं है आपको वीजा मिले, सवाल ही नहीं है। तो दादी ने हमारा प्रोग्राम बनाया विदेश जाने का, यूके का बना था। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ चलना, इस वक्त मैं किसको भी नहीं लेके आऊंगी, आपको लेके जाऊंगी। फिर मैं यहां आई कुछ काम से, तो उनको संकल्प आया नहीं अमेरिका का भी वीजा कर लो। तो हम अमेरिका का वीजा करने गए, मेरे हाथ में एक दिन था और एक दिन में वो वीजा किया। तो वो क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन उसने मेरे को पूछा, आप किसके साथ ट्रैवल करोगे। अब वो ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते, तो मैंने बोल दिया हमारी दादी के साथ। तो मुझे क्वेश्चनरी में क्या पूछा, खाली दादी के बारे में ही पूछा और कुछ नहीं पूछा। वो इस वक्त कहाँ है, वो कहाँ परमानेंट रहती है, क्योंकि उनको तो पता है कि ब्रह्मा कुमारी इसकी हेड कौन है, कितने सालों से आप उनके साथ हो, तो वैसे क्वेश्चन पूछे। और एक 3 मिनट के अंदर वीजा सैंक्शन हो गया। कहने का भाव यह है कि उनकी संकल्प शक्ति इतनी जबरदस्त थी, वो जो सोचती थी वो हो ही जाता था। अडग, वो आपने सुना है ना, उनका वो एक बार कंपटीशन हुआ था, दादी ने योग करवाया और उसने जो बोलता था वो हो जाता, चाबी टर्न हो जाए, रिंग टर्न हो जाए। यूरी गेलर के साथ उनका हुआ था। तो ये तो हमने प्रैक्टिकल देखा है, प्रैक्टिकल मेरे अनुभव से कहती हूं कि एक बार लोटस का बिल लाख ऑफ रुपीज 2-3 लाख रुपया बिल आया, जो आने वाला 25,000-30,000। तो लोटस तो मधुबन के ऊपर डिपेंडेंट था। मधुबन का एक छोटा कमरा लोटस था। तो लोटस छोटा कमरा था, तो हम जो एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर सकते थे ना, हम सीधा दादी को लिखते थे, प्रकाशमणि दादी को। तो प्रकाशमणि दादी ने ऐसी पालना दी, नेक्स्ट डे नहीं उसी दिन वो हेल्प आ जाती थी। तो उस वक्त ऐसा बिल आया, अभी हम उसकी अर्जी करें कि इसको रिवाइज करो, चेक करवाया, उल्टा चल गया था मीटर, उल्टा चल गया था। तो उसको ठीक करने के लिए भी पहले बिल भरना होता है। तो बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो दादी को कहा, दादी ने जानकी दादी को कहा कि ऐसा लोटस में हुआ है। तो दादी जानकी ने क्या किया, मेरे को बुलाया, इधर आओ। अरे ऐसा कैसे हो गया, सारा हंगामा हो गया, मतलब आवाज हो गई इतनी। तो मैंने बोला दादी मैं क्या करूं, तो बोले तू गई थी। मैंने बोला नहीं, एक भाई जो निमित्त है उसको भेजा था। फिर दादी ने मुझे बुला करके कहा, अगर ऐसी कोई भी बात होती है ना, मैं आपको बोलती हूँ आप पहुंच जाना उधर और वो काम हो जाएगा, आप पहुंच जाना हो जाएगा। तो वो दादी ने जैसे कि ब्लेसिंग्स दे करके रखा कि आप जहां पर भी जाओगे ना, पहुंचोगे ना, वो काम हो जाएगा। तो उसके बाद मैं घर गई, खुद उस प्रॉब्लम को डील किया और वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। चलो वो प्रॉब्लम तो ऐसा था कि सॉल्व होने वाला था क्योंकि रॉन्ग रीडिंग हुआ था, लेकिन उसके पश्चात भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आए जो बिल्कुल इम्पॉसिबल होते थे, लाखों रुपयों का नहीं पर करोड़ों रुपयों का उसमें मकान रेगुलराइज कराने में ऐसे खर्चे होते थे। और मुझे सब बोलते थे कि कोई चेक करने नहीं आता है तो तुम सामने से क्यों जा रही हो, ऐसा ना हो कि उल में से चुल में पड़ जाए, तो आप चुप करके बैठो ना, जब आएगा तब देखना। तो मुझे होता था नहीं, आज हम हैं कल नहीं है, कल दूसरी कोई बहन है, और वो उसको पता ना चले इस मामले में, तो हमारे होते होते ये काम हो जाना चाहिए। तो हमने रमेश भाई से बात किया तो उसने भी ओके कर दिया। तो जो काम 1,20,00,000 में होने वाला था वो सिर्फ 12,00,000 में हो गया, सिर्फ 12,00,000 में। तो मैं ये मानती हूं कि ये हमारी दादी जानकी का ब्लेसिंग्स है कि आप जहां पहुंचेंगे ना काम हो जाएगा। ये एक काम नहीं, प्लेन को रुकवाने का भी काम, प्लेन कभी रुकता नहीं है किसी के कहने से। एक बार मुझे एक्सपीरियंस है कि अशोक मेहता फ्लाइट में जा रहे थे, वो देर से पहुंचे और हमारे सारे दूसरे फॉरेनर्स जो थे ना उनका चेक इन हो गया था, उन्होंने बोर्डिंग पास ले लिया था और इनको लेना था तो बोले सीट नहीं है। तो हमने उनको बोल दिया अगर सीट नहीं है ना ये सारे पैसेंजर को हम बिठा देंगे, नहीं जाने देंगे, आप सीट करके दो। तो 10 मिनट फ्लाइट लेट भी किया और उसकी सीट भी हो गई। तो मतलब बहुत सारे काम ऐसे होते थे। सरला दीदी हमें कहती थी ये फोल्डर्स कॉन्फ्रेंस के हैं और आपको हमको बॉम्बे भेजने हैं, आज ही भेजने हैं। मैं बोलती थी दीदी फ्लाइट निकलने पे 15 मिनट पड़े, गेट भी क्लोज हो जाएगा। दीदी भी कहती थी नहीं तुम जाओ हो जाएगा। तो मैं जाती थी, लास्ट पैसेंजर पायलट निकलता था तो पायलट को भी रिक्वेस्ट कर देती थी भाई ये है हमारा बॉम्बे में ये व्यक्ति एयरपोर्ट पे जॉब करता है, वो आपको मिलेगा, खुद आ जाएगा और आपसे ये फोल्डर ले लेगा। तो दादी का कमाल। और हमारी दीदी भी एग्जैक्टली फॉलो करती थी दादी को, तो उसकी भी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग। जो बिल्कुल इम्पॉसिबल काम होते उसको भी वो पॉसिबल कराती थी। तो कहेंगे कि दादी ने रिसोर्सेज न होते हुए भी कैसे मैनेज करना वो दादी ने सिखाया था, क्योंकि छोटा सा घर था। मैं 3-4 बार बोला दादी को, दादी अभी तो आप देखो समझ कैसे है, सारे पैसेंजर ऐसे जा रहे हैं और आप थोड़ा बड़ा मकान तो लो, ऐसे क्या कर रहे हो। मैं उनको खाली बोलती थी ना तो मुझे 5 घंटा स्टोरी सुनाती थी कि मैं पूना में कैसे सेवा की, एक ही कमरा वही किचन वही क्लासरूम, लेकिन मेहमान आते थे तो भी मैं रखती थी वहां, सारे सिंधियों के मकान पड़े रहते थे, उनकी चाबी मेरे पास रहती थी, उनको घर देती थी रहने के लिए लेकिन खुद ऐसे रहती थी। तो कैसे खाने को बैठती थी दादी और कोई आ जाता था ना तो खुद की रोटी काट के उसको गिट्टी खिलाती थी दादी, और उसमें से वो पालना करती थी। तो वो जो सब बारी सारी बातें सुनाई, लंदन में गए तो दादी के लिए पलंग नहीं था तो किसी ने एक दरवाजा पुराना फेंका था तो वो उठा करके ले आए और वो 4 साइड ईंटें रख करके वो पलंग बना करके दादी रही। तो दादी ने मुझे 5 घंटे तक फ्रॉम पूना टू लंदन लंदन की स्थापना कैसे हुई वो स्टोरी सुनाई कि तुम चुप करके बैठो, तुम चुप करके बैठो। पर सचमुच मैं कहूं, नीता बहन बैठी है बाजू में, हमारे साथ रहती थी वहां, कि हमारे पास चार मकान, सभी के ऊपर के फ्लोर्स और एक दूसरा मकान, ऐसे वहां लास्ट सातवें साल मिला। तो समझो कि चार घर हमको हो गए वहां, मकान दूसरे के यूज हमको करने के, मेंटेनेंस भी नहीं, मेंटेनेंस भी वो कराते थे, सफाई भी वो कराते थे, और रिलेशन उन लोगों के साथ ऐसे बनाया था कि हम लोग बहने होती थी, टमाटर खुट जाए तो किसी की भी फ्रिज खोलो लेके आओ, दूध खुट जाए किसी की भी फ्रिज खोल के तपेली उठाओ लेके आओ, उनके घर यूज करो। इतना एयरपोर्ट का काम होते हुए एक व्हीकल नहीं था, आज मैं कहूंगी 25 व्हीकल है, लेकिन उस वक्त एक व्हीकल नहीं था, एक स्कूटर नहीं था, लेकिन मैं रोज एयरपोर्ट पे नई गाड़ी लेके जाती थी, किसी का भी स्कूटर उठाया लेके गई। तो मुझे वहां पूछते थे, बहन जी आपके पास कितने व्हीकल है? मन में तो हंसी आती थी, एक भी व्हीकल नहीं और सबके व्हीकल हम लोग यूज कर रहे हैं, साइकिल थी खाली, सोचो साइकिल। तो वो कला जो है ना, दादी ने सिखाई कि किसी की भी प्रॉपर्टी अनयूज्ड पड़ी है उसको बाबा की सेवा में यूटिलाइज करना और उसका भाग्य बनाना। मैं ये कहूं कि वो सोसाइटी ऐसी थी कि स्वर्ग स्वर्ग। हमने बचपन ऐसे काटा, हंसते खेलते, कुछ सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी कभी तिनका भी महसूस नहीं हुआ कि ये चीज हमारे पास नहीं है, गाड़ी दूसरों की खड़ी है, चीजें सब पड़ी है। और वहां कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता था ना, तो बहनों को ना बुलाए जब तक उनके गेस्ट कितने भी बैठे हो ना, तो केक नहीं कटती थी। प्रकाशमणि दादी वहां इतना आती थी, इतना आती थी, और वो भी उन लोगों को इतनी पालना देती थी कि दादी पहले लोटस में पैर रख ही नहीं सकती, दादी को दूसरों के घर में पैर रखना पड़ता था, उनके घर में जाना पड़ता था, उनको सेटिस्फाई करना पड़ता था, फिर लोटस में आती थी। और प्रकाशमणि दादी इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, सब कुछ प्रॉम्प्टली कराया, मैं नहीं बोलती हूं नहीं कराया, सब कुछ कराया उन्होंने, और हिसाब भी एकदम अच्छे से दिया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल वन पाई भी, आगे पीछे नहीं, वन पाई भी। हर मास दादी के पास हिसाब पहुंचता था, लेकिन प्रॉम्प्टली दादी की हेल्प भी एक सेकेंड में आती थी, प्रकाशमणि दादी की। और उस वक्त हमारे पास सेवाधारी भी नहीं होते थे, एयरपोर्ट पे भी हम, खाना खिलाने में भी हम, क्लास कराने में भी हम लोग, चार पांच चार जो बहनें होती थी, सब कुछ वही होता था। तो जगदीश भाई हमारे है ना वहां आते थे, तो जगदीश भाई को सब जानते हैं, जगदीश भाई क्या कहते थे, ये सच्चा आशियाना है। इतना छोटा सा घर, उनकी गाड़ी पहुंचती थी, कहते थे हाँ आशियाना में पहुंच गए, इतनी खुशी। हम कहते थे दे तो हम कुछ नहीं सकते, फिर भी आते हैं तो इतने खुश। और उस वक्त हम लोग जब सेंटर पे आए, इतने कंप्यूटर्स नहीं थे हमारे पास, कंप्यूटर हमको चलाना नहीं आता था, लेकिन भाई साहब तो लिखते रहते ना, तो कभी कुछ लिखा हुआ देते थे कि ये मुझे फेयर करके दो कुछ भी। तो हम लोग क्या करते थे, कुछ मुझे आता था, कुछ हमारी दूसरी बहन को आता था, कुछ तीसरी बहन को आता था, तो हम तीनों मिला करके करके देते थे, वो सामने बैठे बैठे सब देखते थे। फिर भाई साहब कहते थे मैं रतन मोहिनी दादी को कहूंगा कि ब्रह्मा कुमारियों की ट्रेनिंग तो भले आप माउंट आबू में दो, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के लिए तो लोटस में ही भेजो। क्योंकि कभी ये सोचा नहीं है मेरे को नहीं आता है, ये इसको आता है, इसको इतना आता है तो मेरे को इतना आता है, तो इकट्ठा कर दिया। तो ये कैपेबिलिटी देख करके दादी कुछ कुछ यज्ञ की बातें भी सुनाती थी, और जो जहां से काम नहीं होता था हमको सुनाती थी कि आप इनके साथ रिलेशन रखो अच्छा, और ये काम आप लोग पूरा कर दो। दादी ऐसे कहती थी, जो जहां से काम नहीं होते थे ना दादी बता के जाती थी कि आप लोग, आपका रिलेशन इनके साथ अच्छा है ना, तो आप लोग ये काम करो, फिर वो काम कितना भी बड़ा हो, कितना भी। हाँ, पर दादी जब बुद्धि चलाती है, दादी जब डायरेक्शन देती है, आपने अगर बुद्धि चलाई तो आप जहां हैं वहां ही रहेंगे। क्योंकि हमारे बड़े जो हैं वो जिस ढंग से सोचते हैं, जिस बेहद की भावना से सोचते हैं, वो हम नहीं सोच पाते। तो उस वक्त भले हम पढ़े लिखे थे लेकिन बुद्धि को ब्लॉक किया, उन्होंने जो कहा जी हाँ जी हाँ। अगर जी ना कहा या कुछ क्वेश्चन किया तो उस फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैं कहूंगी कि आपके भी सेंटर पे जो भी बड़े हैं, जो भी एडवाइस दे रहे, उसी हिसाब से चला। आप सोचो, मैंने 10 गाड़ी, दादी पूछती थी मेरे साथ कितनी गाड़ी चल रही है, तो मैं बोलती थी दादी आज आपके पीछे 10 गाड़ी रहेगी। जो फॉरेनर्स आए हुए होते थे उनका हमने पहले से ही अरेंज किया होता है, इस गाड़ी में ये बैठेगा, इस गाड़ी में ये बैठेगा। वो 10 गाड़ी रेडी होती थी, लास्ट में दादी आती थी, फिर उनको देखती थी ना, टोली देती थी कि ये व्यक्ति आया है, ये व्यक्ति आया है, तो मुझे बोलती थी ये किधर बैठा है, उसको बोलती थी उधर, उसको उधर से उधार उतार और उस गाड़ी में बैठा। तो जो आपने प्लानिंग किया है ना वो सारा चेंज हो जाता था, पूरा लास्ट मोमेंट बैठे हुए को उतारना और फिर दूसरी गाड़ी में बिठाना। तो ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब भी दादी ट्रैवल करे ऐसा ही होता था, दादी के प्लानिंग से गाड़ी जाती थी। तो उतना एडजस्टिंग नेचर दादी ने हर तरह से मोड़ा, तोड़ा मोड़ा जोड़ा, कि कहां ये टूटता तो नहीं है। तो इतना मोल्डिंग और फ्लेक्सिबल, लास्ट मोमेंट सब चेंजेस करती थी। और मैं सिर्फ अभी थोड़ा सा शेयर किया दादी जानकी का, ऐसे तो इतने साल, लगभग 30 साल दादी के साथ बिताए। मैं कहूंगी कि दादी ने जीवन बनाया, हम दादी को कुछ भी बोल सकते थे, दादी सब सॉल्यूशन देती थी। ये भी अनुभव है, ऐसे कड़े कड़े समय में भी उसने जो कहा हो और बड़ी बड़ी परीक्षा आई हो, यज्ञ की तरफ से भी आई हो, परंतु दादी ने कहा तो परीक्षा परीक्षा हमको लगी ही नहीं, चाहे सामने कितनी भी बड़ी सेना हो, लगी ही नहीं, ऐसे निकल गई। तो दादी का सबसे बड़ा गुण था, सबसे बड़ा, जिसको भी दादी ने जिसकी जिम्मेवारी ली एक बार, वो अंत तक लेगी और पार करेगी। जो ये विशेषता थी ना, जिसके कारण से दादी के आगे गृहस्थी लोग भी तन मन धन सबसे संपूर्ण समर्पण होते थे, संपूर्ण समर्पण, क्योंकि उनको पता रहता था कि आगे पीछे भी कुछ तकलीफ आएगी तो दादी बैठी है। तो शायद यज्ञ के अंदर किसने हर रीति से समर्पण कराया हो, और 1, 2, 3, 4 नहीं कितनों को समर्पित कराया हो, तो दादी जानकी, यही गुण, यही क्वालिटी दादी के अंदर थी। एक बार दादी की दृष्टि किसी के ऊपर मैं बोलूंगी गई, या दादी का हाथ आ गया, तो आपका जीवन तर गया, सफल हो गया। वो भक्ति में कहते हैं गुरु का हाथ पढ़ना, परंतु ज्ञान मार्ग में बचपन में हमने देखा कि सच्ची मेरा हो, सच्ची मेरा जिसको मुरली से प्यार था, सच्ची मेरा, तो वो दादी जानकी सच्ची मेरा थी। शुरू शुरू में तो उनके, अगर आपने क्लासेस सुने हो पहले पहले के, आपको समझने में भी टाइम लगेगा कि दादी कहना क्या चाहती है। और इतनी वैरायटी आती थी, कभी भी उनका क्लास एक दूसरे से मैच नहीं होता था। तो ये तो दादी जानकी थी। कितना बजा पूरा हो गया ना टाइम? तो हमारी गुलजार दादी रह गई, वो तो आप भी जानते हो, दो शब्दों में तीन शब्दों में उनके बारे में बोल देंगे। वो तो थी ही बाबा का रथ, जो दिल से संपूर्ण रीति से बाबा को समर्पित। आपने देखा होगा उनके क्लासेस में भी अव्यक्त वाणी के बोल के सिवाय, शब्दों के सिवाय कभी भी कुछ मिक्स नहीं होता था। जो बाबा के शब्द होते थे वही उनकी क्लासेस में भी वही शब्द होते थे। और इतनी निरसंकल्प दादी, इतनी निरसंकल्प, एक संकल्प भी उनको गलत नहीं चलता होगा, इतनी प्योर दादी, इतनी प्योर। आपने कभी उनको मीटिंग में भी देखा होगा, सब बोलते सब बोलते, लेकिन दादी सुनती है। दुनिया के अंदर सुनने वाले लोग कम होते, बोलने वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो दादी सुनती थी, और लास्ट में दादी को पूछा जाता था, दादी अभी आप कुछ सार सुनाओ। तो जो कोई नहीं बोलता था ना, और उस टॉपिक का जो जिस्ट होना चाहिए, जो सार होना चाहिए, उनके अंदर से वही निकलता था। और दूसरा, जो वीआईपी से दादी मिलती थी, दादी ने कभी नहीं सोचा था कि मैं दादी हूं। दादी उस वक्त टीचर बन जाती थी, टीचर बन जाती थी। वो उसको ऐसे पालना देती थी, ऐसे पालना देती थी, फर्स्ट लेसन तो फर्स्ट मीटिंग में करा ही देती थी। फर्स्ट लेसन फर्स्ट मीटिंग में आत्मा का लेसन उसको करा ही देती थी। और इतनी मीठी भाषा, इतनी मीठी भाषा कि वो आत्मा एटलीस्ट भगत तो बन ही जाएगा एक मीटिंग में, फिर धीरे धीरे अगर कांटेक्ट में रहेगा तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। उनके वाइब्रेशंस इतने प्योर। सोचो, बाबा कहते हैं मैं को मिटाओ, मैं को मिटाओ। आज किसने मैं को मिटाया है, किसने मैं को मिटाया है? तो वो गुलजार दादी, अपने संपूर्ण अस्तित्व को खत्म कर दिया कि बाबा ने इस रथ को लिया है तो इस रथ से बाबा ही दिखना चाहिए। इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, बाबा वाली दादी। देखते ही चाहे बाबा नहीं भी है तो भी लगता है इनके अंदर बाबा है, क्योंकि बाबा की एक एक चीज को जीवन में उतारना, तो वो दादी करती थी। दादी के द्वारा कईयों को ऐसे साक्षात्कार भी हुए होंगे, कईयों को हुए होंगे, दादी की दृष्टि से कईयों के काम पूरे हुए होंगे, वो हमको भी एक्सपीरियंस है, लेकिन टाइम नहीं है शेयर करने का। खाली दृष्टि दी और आपका काम पूरा। मैं लोटस की मैनेजमेंट अगर कहूं, आज वो छोटे से घर में तीन बड़े घर हो गए, लोटस, न्यू लोटस, डायमंड लोटस। लेकिन आप लोटस हाउस में आएंगे ना, जहां दादियां रही हुई है, दादियों के वाइब्रेशंस है, उस घर को मैनेज कौन करता है? अब भी हम बहने नहीं करती आज भी, क्योंकि उस वक्त भी दादी की वहां उपस्थिति होती थी ना, तो हमको लगता था मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली जादू ही शक्ति से चलता है। जादू ही शक्ति से चलता है, उसकी सिर्फ उपस्थिति होती थी ऊपर। तो ऐसे तो दादी कितनी बार न जाने वहां रहे हैं। मैं शॉर्ट में कहूंगी तो लोटस के अंदर कोई भी नई चीज आती है, इवन साइकिल, इवन स्कूटर, इवन ओवन, इवन फ्रिज। घर के ओपनिंग तो ठीक है, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें जो आती है ना, वो भी किसी ना किसी दादी के हस्तों से उसकी ओपनिंग हुई है। तो घर के अंदर चीजों के अंदर भी दादी की यादगार। और मधुबन में भी विदेशी लोग आते थे, शायद दादी से इतना करीब नहीं मिल पाते थे जितना दादी लोटस में होती थी। और लोग जो भी आने जाने वाले, केवल फॉरेनर्स नहीं, इंडियन भी, वो भी दादी को बिल्कुल करीब से मिलते थे, बिल्कुल करीब से। हमने हर त्योहार, लोटस के लोगों ने हर त्योहार दादी के साथ मनाया। कोई ना कोई दादी, एक भी रक्षाबंधन दादी के बिगर में नहीं हुई। तो मैं तो मेरे जीवन की लाइफ में जो कहूंगी एक सेंटेंस के अंदर, 35 साल बाबा के यज्ञ में हंसते खेलते कूदते, कोई पुरुषार्थ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं, बस उनका जीवन देखते, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ देखते, उनका थोड़ा बहुत फॉलो करते, थोड़ा बहुत कहूंगी फॉलो करते, ज्ञान का सारा जिस्ट वो आ गया उनके जीवन से। प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रैक्टिकल योग, प्रैक्टिकल धारणा, और क्या सेवा की तो वो मूर्ति थी, हद तक सेवा। कभी कहीं पे भी उन लोगों ने ना नहीं बोला, चाहे कैसी भी उम्र हो, चाहे कैसी भी शरीर की स्थिति हो, उनको प्रैक्टिकल में सेवा करते देखा। तो ज्ञान किसी ने सुनाया नहीं कि दादियों की जीवन ऐसी, लेकिन प्रैक्टिकल देखी। तो अष्ट रत्नों का जीवन बहुत करीब से देखा। शायद किसमें कुछ चीज मिसिंग हो एक आधी, तो वो चीज दूसरे के अंदर उतनी हाई लेवल में होती थी। तो वो 16 कलाएं क्या हो सकती है, वो संपूर्णता क्या हो सकती है, ये हमारी सभी दादियों के जीवन को अगर आप करीब से देखेंगे, करीब से देखेंगे, तो आपको प्रैक्टिकल में वो दिखाई देगी। जो लोगों को लगता है कि सतयुग तो आएगा, उसमें ये चीजें होंगी होंगी होंगी, लेकिन होंगी नहीं, प्रैक्टिकल में थी ये दादियों के जीवन में। ठीक है, ओम शांति।